जैसे 12 नंबर के रजिस्टर में 97 पेज पर 18486 का पैसे क्लास April 18, 1986 गीत है कौन है माता कौन पिता है बच्चों ने बेहद के बाप का फरमान सुना यह जो इस जगत में मम्मा है बाबा है यह जो तुम्हारा नाता है देह के साथ है क्योंकि देह से पहले पहले माता की फिर पिता की लागत होती है ये क्यों कहा ये दुनिया का मिसाल क्यों दिया बाबा जो कुछ बोलेंगे व्यर्थ तो नहीं बोलेंगे दुनिया का मिसाल दिया है तो जरूर अलौकिक दुनिया के लिए दिया है तो यहाँ भी पहले पहले माता की फिर पिता की लागत होती है लगन तो यहाँ अलौकिक दुनिया में क्या हुआ ब्राह्मण बच्चे पैदा हुए और उनकी लगन किससे लगी पहले माता कौन माता ब्रह्मा माता पिता के साथ छोटे छोटे बच्चों की लागत नहीं लगती क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बच्चा बुद्धि होने के कारण बाप को पहचानते ही नहीं इसलिए उदाहरण दे दिया कि पहले पहले माता की फिर पिता की लागत होती है वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उनकी बुद्धि में बैठता है कि वर्षा देने वाला तो बाप होता है माता तो पिता की सहयोगिनी है शक्ति रखने के लिए तो बाद में पिता की लागत होती है तो ऐसे यहां भी ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान का बीज रोपण करने वाले बाप परमात्मा शिव की चोल ने पहले पहले प्रजापिता में प्रवेश किया प्रजापिता के थ्रू ज्ञान का बीज आरोपण माता ने किया तो बच्चों को इस एक्ट का क्या पता बीज तो गुप्त बोया जाता है बच्चों को कुछ पता नहीं फिर वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ के पालना लेते हैं बुद्धि तो फिर भी बच्चा बुद्धि रहती है बेसिक नॉलेज भी माता घर में पढ़ाती है ऊंची पढ़ाई तो पढ़ा ही नहीं सकती तो बच्चे जब बड़े होते हैं समझदार होते हैं क्लास ट्रांसफर होता है जो मुर्गियों ने भी बोला हुआ है कि तुम बच्चों का क्लास ट्रांसफर होगा तो बच्चे समझदार जो बनते हैं उनको ये पता लगता है कि बाप कोई और है जिससे हमको वर्षा मिलना है प्रॉपर्टी मिलनी है तो प्रजापिता का ज्ञान होता है इसलिए मम्मा के शरीर छोड़ने से पहले मुरलियों में बाबा ने प्रजापिता शब्द कभी नहीं बोला प्रजापिता शब्द ऐड किया गया है बाद में जबकि बाबा को भी शरीर छोड़ना था तो उससे पहले ही शिव की सोल परमात्मा शिव ज्योति बिंदु ने ब्रह्मा के थ्रू ये मुरलियों में बात पहले ही उच्चारण कर दी कि तुम बच्चों को ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं लिखना चाहिए क्या लिखना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखना चाहिए 66 से पहले का जितना भी लिटरेचर है अथवा चित्र हैं उनमें कहीं भी प्रजापिता शब्द नहीं मिलेगा। सिक्स के बाद जो बड़े बड़े चित्र बने हैं 30x40 इंच के, हिंदी में, गुजराती में, अंग्रेजी में, वो है लक्ष्मीनारायण के चित्र और सीढ़ी के चित्र, उनमें प्रजापिता शब्द ऐड किया गया। त्रिमूर्ति का, भोले का और झार का चित्र पहले ही तैयार हो चुका था 60 और 61 में, उसमें प्रजापिता शब्द नहीं है। तो इससे साबित होता है कि प्रजापिता के रूप में पार्ट भर जाने वाली जो यज्ञ की आदि की आत्माएं हैं, राम सीता वाली आत्माएं, वो उस समय तक यज्ञ में आ चुकी है। जैसा कि मुरली ने भी बोला हुआ है, अच्छे अच्छे बच्चे मम्मा बाबा को डायरेक्शन देने वाले, टीचर बनकर के बैठने वाले, ड्रिल कराने वाले, मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, वो आज यज्ञ में है नहीं। पर दूसरी वाणी में बोला, उन बच्चों को कितना समझाया कि तुम विकार में मत जाओ, लेकिन नहीं माने, फेल हो गए। क्योंकि राम सीता को हमेशा पाप्य के लिए बोला है कि राम फेल हो गया, मुरलियों ने कभी फ्यूचर के लिए नहीं बोला कि राम फेल हो जाएगा। तो राम फेल हो गया, ये फेल होने की एक्टिविटी क्या त्रेता में होती है? कब फेल हुआ, कब पढ़ाई पढ़ता था? जरूर संगम युग में पढ़ाई पढ़ते थे, क्या फाइनल एग्जाम में फेल हुआ? यज्ञ के आदि में तो फाइनल एग्जाम था ही नहीं, उसे तो त्रैमासिक परीक्षा कह सकते हैं, मंथली परीक्षा कह सकते हैं, फाइनल एग्जाम तो लास्ट में ही होता है, वो तो सबका इकट्ठा होगा। तो आज में जो बच्चे फेल हो गए, उनमें पहले पहले राम की आत्मा गई यज्ञ से, राम बाप को कहा जाता है। मुरली ने बोला, ऐसे कभी नहीं कहा कि कृष्ण बाप को कहा जाता है, तो यंत्र क्यों बोला है? इसीलिए बोला कि बाबा क्लियर करना चाहते हैं कि सुप्रीम सोल ज्योतिबिंदु सिद्ध की जो आत्मा है, आत्माओं का बाप, वो मनुष्य आत्माओं के बाप के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, और जो मनुष्य आत्माओं का बाप है वो राम वाली आत्मा, वही प्रजापिता का स्वरूप है, जिसके द्वारा पहले पहले क्लैरिफिकेशन मिले ब्रह्मा की सोल को। तो ब्रह्मा की सोल को जो क्लैरिफिकेशन मिला, वो भी डायरेक्ट प्रजापिता से नहीं मिला, किससे मिला? कोई यज्ञ में और यज्ञ माता थी आदमी। ब्रह्मा तो माता का टाइटल धारी, जगदम्बा का टाइटल मिला ब्रह्मा सरस्वती को, क्योंकि मुरली बोला है वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा ये ब्रह्मा है। अब कौन सा ब्रह्मा? एक तो यज्ञ के आदि वाला ब्रह्मा जो माता के रूप में था, और बाद में आई साक्षात्कार करने वाली सोल। क्यों साक्षात्कार तो उन्होंने पहले किया, तो बाद में क्यों? क्योंकि साक्षात्कार करना अलग बात है, प्रवेश करना अलग बात है। साक्षात्कार तो बहुत से भक्तों को होते रहे, जिन भक्तों को साक्षात्कार हुआ उनके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने शिव बाबा ने प्रवेश कर लिया। तो प्रवेश करना अलग बात और साक्षात्कार होना अलग बात। ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए, गुरु से पूछा, उसने इनकार कर दिया, बाबा की आखिरी गुरु से भी श्रद्धा हट गई, और बाणारसी चले आए, वहां भी आकर के उनको साक्षात्कार होते रहे, लेकिन समझ में नहीं आता था। मुरली में बोला है कि वाराणसी में दीवारों पर चित्र खींचते रहते थे गोले वगैरह के, मूर्ति के चित्र बनाते रहते थे लेकिन समझ में फिर भी नहीं आता था। तो अंत में बाबा को कलकत्ते जाना पड़ा जो पुरानी गति है। इसलिए अगतवाणी में बोला हुआ है एक तरह से को ढूंढा कहां से पूरी बंगाल से। क्यों नहीं कहा हैदराबाद से ढूंढा? इसलिए नहीं कहा कि जिस रथ के लिए मुरलियों ने बोला हुआ है ये सारे विश्व को स्वर्ग बनाने वाला है ये रथ है। वो रथ वास्तव में ब्रह्मा का रथ नहीं था, यानी दादा लेखराज का रथ नहीं था। तो वो तो शरीर छोड़ गए। विश्व को स्वर्ग बनाने कोई सुखधाम या शांति धाम स्थूल महल बना देने से उनके नाम रख देने सुखधाम शांति धाम थोड़े बन जाता है। ऐसे तो भक्ति मार्ग में भी ऋषिकेश में मंडलेश्वर ने इकट्ठे होकर के जो बिल्डिंग बनाई रखी है साधु संतों की उसका नाम रख दिया है स्वर्ग आश्रम। तो कोई नाम रखने से स्थूल महलमानियों को ये नहीं कहा जा सकता कि वो सुखधाम या शांति धाम बन गई। ये तो ईश्वरीय संगठन है, विशेष बच्चों का संगठन तैयार होता है जो माला के रूप में आज सारे विश्व में पूजा जाता है। दुनिया के हर धर्म की आत्माएं उस माला रूपी संगठन को आज तक भी स्मरण करती आती है। तो ऐसे स्वर्ग की स्थापना करने वाला रथ कौन सा? क्या ऐसे ही रथ की पूजा होगी? विश्व में एक ही रथ ऐसा है, एक ही ऐसी मूर्ति है जो विदेशों में भी खुदाई करने पर मिली है सबसे ज्यादा तादाद में। वो मूर्ति कौन सी है? शंकर की नग्न मूर्ति, जिसे जैनी लोग तीर्थंकर कहते हैं, दिलवाड़ा मंदिर में जिसकी मूर्ति रखी हुई है। दूसरी मूर्तियां इतनी ज्यादा तादाद में नहीं मिली है। ये प्राचीन पुरानी उपासना भारतवर्ष में इसके भी प्रमाण मिल रहे हैं। तो इससे साबित हो गया कि परमात्मा ने जिस रथ के द्वारा ये कार्य संपन्न किया वो भाग्यशाली रथ कोई और है। भाग्यशाली रथ तो जरूर योगी रथ होगा। मुरली में बोला हुआ है कि योगी का हाथ फेल नहीं हो सकता। ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद जो पहली बुलेटी निकली है उसने देहदारी धर्म गुरुओं ने खुद ही छपाई दिया कि बाबा के दिल में दर्द हुआ और जब तक डॉक्टर आया तब तक उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो इससे साबित नहीं होता कि दादा लेखराज उस शरीर से संपन्न स्टेज को पहुंचे, उनको सूक्ष्म शरीर का बंधन बन गया। सूक्ष्म शरीर का बंधन भी बंधन है, वो बंधन भी खलास होना चाहिए। तो वही सोल 68 के बाद किसी ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। तो ब्रह्मा का पाठ तो लगातार चलता है, इसलिए अर्गतवाणी में बोला हुआ है कि बाप दादा ने स्थान परिवर्तन किया है। जैसे तुम बच्चे सेवा स्थान चेंज करते हो वैसे बाप दादा ने भी राजधानी स्थापन करने के लिए सेवा स्थान चेंज किया है। कहाँ स्थान चेंज किया? पढ़ाई तो शांति के स्थान में होती है, तो माउंट आबू का जो स्थान था वहां से पढ़ाई पढ़ाई गई छोटे छोटे बच्चों को, और राजधानी स्थापन करने का काम छोटे बच्चों का नहीं है। उसमें जो समझदार बच्चे हो गए जिनके लिए बोला हुआ है कि जिनकी आत्मा की सारी कट उतर जाती है वो बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखेंगे, मुरली में बोला है। तो जिन बच्चों ने बिंदु को याद करते करते अपनी बुद्धि को इतना सूक्ष्म बनाया कि उनकी आत्मा की सारी कट उतर गई, क्योंकि बिंदु को याद करने वाले और साकार को याद करने वाले दोनों में अंतर तो होगा। बिंदु को याद करने वालों की बुद्धि सूक्ष्म होगी और साकार रूप को याद करने वालों की बुद्धि उतनी सूक्ष्म नहीं हो सकती, क्योंकि मुरली में तो बाबा ने मना कर दिया इसे ब्रह्मा के साकार रथ को याद नहीं करना है, अगर इनका फोटो रखेंगे तो पतित हो जाएंगे। लेकिन जिनको जो ड्रामा में नूद है वो तो करना ही करना है, यज्ञ के आदि की वो आत्माएं जो राम और राम के ग्रुप के साथ छोड़ करके चली गई थी, वो आत्माएं मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद पुनः दोबारा यज्ञ में आती हैं। तो यज्ञ में जब दोबारा आएंगी शरीर छोड़ने के बाद, ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद, तो उन्होंने ब्रह्मा के साकार स्वरूप को तो देखा नहीं, तो उनको बिंदु ज्यादा याद आएगा या ब्रह्मा का साकार रूप ज्यादा याद आएगा? बिंदु ज्यादा याद आएगा। और जिन्होंने साकार से पालना ली है, उसकी गोद में खेले हैं, उनको बिंदु ज्यादा याद आएगा या साकार ज्यादा याद आएगा? उनको साकार ज्यादा याद आएगा। और साकार भी वो जो शरीर छोड़ने वाला है, अकाल मूर्त तो है नहीं, वो मूर्ति ऐसी तो है नहीं जिसको काल न खाए। तो विनाशी शरीर को याद करने वालों का अंजाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? चोरों को याद करेंगे तो चोरों जैसी बुद्धि बनेगी, साहूकारों को याद करेंगे तो साहूकारों जैसी बुद्धि बनेगी, राजा का संग करेंगे तो राजाओं जैसी बुद्धि बनेगी। तो ब्रह्मा के साकार स्वरूप को जिन्होंने बुद्धि से याद किया, उसमें अंतर क्या पड़ेगा? जो ब्रह्मा की गति होगी वही उनकी गति होगी, मतलब उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। वो जाकर के सतयुग में प्रिंस बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस, बाकी संगम युग में नई दुनिया की स्थापना करने के डायरेक्ट कार्य में जो परमात्मा शिव का डायरेक्ट बच्चे कार्य करेंगे, उसमें सहयोगी नहीं बन सकते। तो वो कौन सी आत्माएं बनेंगी? वही यज्ञ की आदि आत्माएं जो राम के बाद यज्ञ को छोड़ करके चली गई थी, राम सीता के बाद। तो वो यज्ञ माता आदि वाली और यज्ञ पिता, यज्ञ माताएं भी दो थी, एक नहीं थी, क्योंकि बोला अच्छी अच्छी बच्चियां, ये नहीं बोला अच्छी अच्छी बच्ची। अच्छी अच्छी बच्चियां माने कम से कम दो बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को ड्रिल कराती थी, टीचर बनकर के बैठती थी। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगे, वो भी गुम हो गए। क्यों गुम हो गए? उसका भी कारण बता दिया। यज्ञ के आदि में मुरली में बोला है, शुरुआत में इतना ज्ञान नहीं था इसलिए टूट पड़े, क्योंकि शुरुआत में तो वो पुरानी गीता, संस्कृत वाली गीता, वो सत्संग में सिंध हैदराबाद में पढ़ करके सुनाई जाती थी, ओम ओम का उच्चारण होता था जैसे भक्ति मार्ग वाले करते, तो भक्ति मार्ग का ज्ञान था। शुरू शुरुआत में बाबा ने कोई शस्त्र चक्र का 5-4 वर्ष का आदि मध्यंत का नॉलेज नहीं दी। तो ये नॉलेज तो दी है यहाँ माउंट आबू, कराची से लेकर के माउंट आबू तक बाबा के शरीर छोड़ने तक ये नॉलेज दी गई। सन 51 से लेकर के 68 तक रेगुलर बाबा ने वाणी चलाई ब्रह्मा के तन से, गीता माता हमारे सामने आ गई। तो ये 18 साल की जो साकार मुरली है वो ही हमारी गीता हो गई। तो ये गीता माता को क्लैरिफिकेशन देने के लिए टीचर बनकर के फिर से परमात्मा की सृष्टि पर आना पड़े, क्योंकि ब्रह्मा का तो शरीर छूट गया। जिस ब्रह्मा को बच्चों को जन्म देना था, पालना देनी थी, प्यार देना था, वो कार्य संपन्न हुआ। बाकी बाप का काम क्या होता है? बाप का काम आदि में होता है बीजारोपण करना, ज्ञान का बीज बो दिया, वो बाप चला गया। वही बाप ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद फिर यज्ञ में आता है और उसमें ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश करती है और परमात्मा सिद्ध भी प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करके फिर से आकर के वर्षा देने का कार्य शुरू करते हैं। वर्षा क्या है? पहले आत्मा को वर्षा मिलेगा या शारीरिक रूप से स्थूल वर्षा मिल जाएगा विश्व की वर्षा का? पहले तो आत्मा को वर्षा मिलेगी। आत्मा का वर्षा क्या है? आत्मा का वर्षा है गति सदगति बौद्धिक रूप से। आत्मा शरीर भल बंधन में हो लेकिन आत्मा अपने को मुक्त अनुभव करे, आत्मा में किसी प्रकार का दुख अनुभव न हो, तो ये तभी हो सकता है जबकि मन बुद्धि की स्टेज मनन चिंतन मंथन की बनी हुई हो, ज्ञान को हमने अपना बना लिया हो। ये नहीं कि मुरली जब तक सुन रहे हैं तब तक अवस्था सही है, मुरली जब तक पढ़ रहे हैं तब तक अवस्था ठीक है, और मुरली पढ़ना या सुनना नहीं मिला तो अवस्था खराब हो गई। नहीं, मुरलीधर बाप के जो असली बच्चे हैं उनकी बुद्धि मुरली बुद्धि के अंदर चलेगी, मनन चिंतन मंथन की बुद्धि खुल जाएगी, तो ये वर्षा पाने वाले बच्चे पहले प्रत्यक्ष होते हैं। कब से प्रत्यक्ष होते हैं? जो आदि माता थी ब्रह्मा, ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, वो ब्रह्मा की 100 वर्ष आयु पूरी हो तो 100 ईयर ये एज पूरी होती है प्रजापिता ब्रह्मा की 76 में, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा में ही परमात्मा शिव ने पहले पहले प्रवेश किया 37 में। एक्यूरेट तो बताया नहीं जाता, अबाउट बताया जाता है। तो 36, 37 से लेकर 40 ईयर्स और ऐड किए, क्योंकि परमात्मा शिव का प्रवेश होता है वानप्रस्थ अवस्था में। वानप्रस्थ अवस्था कितने साल में होती है? 60 ईयर्स में। तो जरूर है 36, 37 में प्रजापिता ब्रह्मा की एज कितनी होनी चाहिए? 60 ईयर्स। 60 ईयर्स में 40 ईयर्स और ऐड किए तो 76 आ जाता है। इसलिए 76 को अव्यक्त बाप दादा ने अव्यक्त वाणियों में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष घोषित कर दिया। क्या 76 से पहले बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा नहीं हुई? 76 के बाद बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा नहीं हुई? तो 76 को ही बाप का प्रत्यक्षता वर्ष क्यों घोषित किया गया? इसमें क्या खासियत हुई? इसमें यही खासियत हुई कि दुनिया के जो धर्म पिताएं जो कार्य नहीं कर सकते हैं वो कार्य ये सुप्रीम सोल बाप मनुष्यों के पिता प्रजापिता के द्वारा शुरू करता है। वो कार्य कौन सा है जो और धर्म पिताएं नहीं करते? हाँ, और धर्म पिताएं अपने धर्म की स्थापना करते हैं लेकिन धर्म का विनाश नहीं करते। धर्म की स्थापना करते हैं लेकिन राजधानी स्थापना नहीं कर सकते। लेकिन ये बाप धर्म की स्थापना भी करता है और साथ साथ राजधानी भी तैयार करता है। तो 76 से ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर से वो मणके चुनने शुरू होते हैं जो रुद्रमाला के मणके बनते हैं। रुद्रमाला है ही रुद्र शिव की, विजय माला है विष्णु की। तो रुद्र शिव जिस माला को बनाते हैं वो है राजाओं की माला, क्योंकि इसका नाम है राजयोग। इसका नाम कोई रानी योग या प्रजा योग नहीं है या दास दासी योग नहीं है, इसका नाम क्या रखा? राजयोग। तो बड़े बबड़े राजाएं बनने वाली जो 108 आत्माएं हैं वो रुद्रमाला के विशेष मनकों का संगठन सुप्रीम सोल बाप स्वयं करते हैं डायरेक्ट, और ये चांस उन्हीं बच्चों को मिलता है जिन्होंने बिंदु को याद करके अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बना लिया, ज्योतिर्मय बना लिया। क्योंकि बिंदु को याद करने से बिंदु जैसी स्टेज जरूर बनेगी, निराकारी स्टेज जरूर बनेगी। निराकारी बाप के वो निराकारी बच्चे रुद्रमाला में मुख के रूप में दिखाए जाते हैं। मुख का मतलब है उनका मुख ही पवित्र है, बाकी शरीर पवित्र नहीं हो सकता जब तक वो रुद्रमाला के मणके विजयमाला में ऐड नहीं किए जाए। जब ऐड हो जाते हैं तो शरीर ही पवित्र हो जाते हैं। तो यज्ञ की वही आदि वाली आत्माएं जो राम सीता के बाद शरीर छोड़ करके चली गई, वो सारा ग्रुप मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद फिर यज्ञ में आना शुरू होता है। 76 से वो बच्चे प्रत्यक्ष होना शुरू होते हैं, ये एडवांस पार्टी का कार्य शुरू हो जाता है। एडवांस का मतलब आगे आगे जाने वाले, ज्ञान में, योग में, धारणा में, सर्विस में, हर बात में आगे जाने वाले। लेकिन गुप्त पुरुषार्थी होने के कारण उनकी धारणा प्रत्यक्ष नहीं होती है, गुप्त रहती है। क्योंकि बोला हुआ योग बल से तुम मृत्यु विश्व की बात सही पाते हो। क्या क्यों नहीं कहा धारणा के बल से, ज्ञान के बल से या सर्विस के बल से? क्योंकि सर्विस भी प्रत्यक्ष हो जाती है, ज्ञान भी प्रत्यक्ष हो जाता है, और किसी के अंदर दैवी गुणों की धारणा है वो भी प्रत्यक्ष हो जाती है। लेकिन योग, योग क्या प्रत्यक्ष होता है? क्या कोई कह सकता है कोई कितना योग लगाने वाला है? ये तो अंदरूनी चीज है। योग की जो गतिविधि है वो बहुत हुई है, ये सबकी पहचान में नहीं आ सकती। हाथ पांव बांध करके बैठना वो अलग बात है, और चलते फिरते लगन लगी रहे वो एक अलग बात। तो वो योगी तू आत्मा है, 108 बीज रूप मण के जो सारी शक्ति के बीज हैं, वो 76 से प्रत्यक्ष होना शुरू होते हैं। और उनमें सबसे पहले पहले वो ही आत्माएं लाइट में आना शुरू होंगी जो यज्ञ के आदि में निमित्त बनी थी, यानी यज्ञ पिता, प्रजापिता, यज्ञ माता, दोनों माताएं। तो निमित्त बनना भी दो प्रकार से होता है। हमारा पुरुषार्थ ही दो प्रकार का है, एक तो है योग का पुरुषार्थ, प्रजापिता का पार्ट जो है वो प्रजा माता के साथ लुदा हुआ है ना। अगर डायरेक्ट ब्रह्मा को क्लियर किया होता तो पिता से पहले जन्म किसका होगा? पिता जो है पहले तो अपनी बन्नी बनाएगा ना। तो सेवावा ने कहा कि ये ब्रह्मा मेरी बन्नी है, तो बन्नी साकार में बनाई जाएगी या निराकार में? बनाने वाला साकार होने का, बनाने वाला भी और बन्नी बनने वाला भी, बन्ना बन्नी दोनों साकार होने चाहिए। तो प्रजापिता साकार था और बन्नी, बन्नी भी तो साकार होनी चाहिए। अच्छा, साकार होनी चाहिए, और दूसरी बात वो स्त्री चोले में होनी चाहिए पुरुष चोले में होनी चाहिए? स्त्री चोले में होनी चाहिए, तब तो विश्व में माता के रूप में, ईव के रूप में, हवा के रूप में प्रसिद्ध होगी। तो ब्रह्मा जो है वो उन्होंने तो यज्ञ के आदि में बच्चे का पार्ट बजाया, पहले बाप की प्रत्यक्षता, फिर माता की प्रत्यक्षता, फिर बच्चे की प्रत्यक्षता। माने पहले शिव जयंती, फिर गीता माता की जयंती, फिर कृष्ण बच्चे की जयंती। ऐसे नहीं कि कृष्ण बच्चे की जय जयकार प्रत्यक्षता रूपी जयंती पहले हो जाए और बाप की बाद में। तो प्रजापिता वाली सोल में परमात्मा शिव पहले प्रवेश करते हैं, फिर प्रजा माता में, और प्रजा माता के थ्रू ब्रह्मा को। तो ब्रह्मा को जो संदेश मिला है वो ब्रह्मा ने ग्रास्त किया, वो प्रजा माता भी गई, प्रजा पिता भी गया, और दूसरी माता थी वो भी गई। क्योंकि कृष्ण बच्चा है तो कोई बच्ची भी होगी, सत्युग में तो एक बच्चा एक बच्ची होगी, लेकिन ये परंपरा की शुरुआत कौन करता है? सारी परंपराओं की शुरुआत कहाँ से होती है? चाहे सत्युग की परंपराएं हो और चाहे कलयुग की परंपराएं हो, फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? डालने वाला और डलवाने वाला कौन? सुप्रीम सोल से। तो सत्युग में एक बच्चा एक बच्ची होगी तो क्या संगम युग में शिव बाबा आकर के एक बच्चा एक बच्ची नहीं पैदा करेंगे? तो शिव बाबा ने एक कृष्ण बच्चा यानी ब्रह्मा और बच्ची राधा, वो ये किसी आदि में ही जन्म हो चुका था। टाइटल मिला क्या? ब्रह्मा का टाइटल है प्रजापिता ब्रह्मा। माँ बाप का टाइटल किसको मिलता है? माँ बाप शरीर छोड़ जाते हैं, चले जाते हैं, तो माँ बाप का टाइटल कौन धारण करता है? बच्चे धारण करते हैं। तो माँ बाप का टाइटल कृष्ण बच्चे ने धारण कर लिया, प्रजापिता ब्रह्मा। तो टाइटल धारी हुआ, ओरिजिनल नहीं हुआ। तो टाइटल धारण किया, सत्युग में जाके लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बाकी डायरेक्ट परमात्मा शिव से बनने वाले लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। जो नर से नारायण बनते हैं वो तो नर से प्रिंस बनेंगे। कौन? ब्रह्मा। ओम राधे वाली आत्मा राधे बनेगी, नारी से क्या बनेगी? राधे प्रिंस। डायरेक्ट नारी से लक्ष्मी नहीं बनेगी, लेकिन गाइडिंग किसका है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। ये गाइड नहीं है नर से प्रिंस और नारी से प्रिंस प्रिंसेस। तो जो गायन है वो तो संगम युग का गायन है ना, झूठा गायन तो नहीं हो सकता। तो परमात्मा शिव जिन बच्चों को डायरेक्ट नर से नारायण बनाते हैं इसी जन्म में, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं, वो आत्मा लाइट में आनी चाहिए। तो बता रहे थे कि जो दो माताएं यज्ञ के आदि में थी, उन दो माताओं में भी उनके अलग अलग पार्ट हैं, एक जैसा पार्ट नहीं। एक माता होती है जिसको कहते हैं अधर कुमारी, और एक होती है कन्या, उसका गायन क्या है? हैं? ये है 18486 का पैसे क्लास, पहले पेज का आगे। तो बात चल रही थी कुमारी कन्या और अधर कुमारी की। तो कुमारी कन्या कौन सी हुई यज्ञ की आदि की माताओं में से? क्योंकि वही पावरफुल माताएं थी। हाँ, कुमारी कन्या हुई राधा। कृष्ण जब बच्चा है तो कृष्ण बच्चे के साथ तो कोई बच्ची भी तो हुई होगी बाद में, तो कोई राधा बच्ची थी जिसको बाद में फिर राधे से क्या बनना है? लक्ष्मी बनना है, है? लक्ष्मी बनना है। तो लक्ष्मी का पार्ट सत्यु का होता है। लक्ष्मी अलग देवी है, सत्यु की देवी है, और जगदम्बा कलयुग की देवी है। क्योंकि जगत है 500 करोड़, उसमें देवताएं भी होते हैं तो असुर भी होते हैं। जगत माना सारा विश्व, तो सारे जगत की अम्मा। तो ये पार्ट अलग है असुर संहारिणी का। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला हुआ था कि त्रिमूर्ति के चित्र में मम्मा को बैठाना चाहिए, जगदम्बा को। तो समझाने में शंकर का पाठ सहज हो जाता। क्यों समझाने में सहज हो जाता? क्योंकि शंकर तो योग लगाने वाली आत्मा है, वो स्वयं कुछ नहीं करता, योग बल के आधार पर दूसरी आत्माएं प्रेरित हो जाती। जो बाबा ने कहा है कि तुम बच्चे अंत में ऐसे योगी बनेंगे कि दूसरे के शरीर में प्रवेश करके कार्य मम्मा बाबा की तरह संपन्न करेंगे। तो इतना योग बल की पावर बढ़ेगी, क्योंकि प्रवेश करने वाली आत्मा पावरफुल चाहिए, और जिसमें प्रवेश किया जाए वो कमजोर आत्मा होती है, जो उसके ऊपर आकुपाई कर सके। तो प्रजा पिता और प्रजा माता। पिता अपना घर चलाने के लिए किसको कंट्रोल में करता है? माँ को कंट्रोल करता है, माँ के ऊपर परिवार का सारा वजन छोड़ता है। तो माँ यज्ञ माता, यज्ञ के आदि वाली, वो हुई अधर कुमारी। और जो कृष्ण के साथ बाद में जन्म लेने वाली राधा हुई, वो हुई कुमारी कन्या। तो ये दोनों माताएं यज्ञ के आदि में थी। तो यज्ञ के आदि की दोनों माताएं उनमें एक है वैष्णो देवी के रूप में पार्ट बजाने वाली और एक है जगत अम्बा माने ब्रह्मा बड़ी माँ, ब्रह्मा माने बड़ी और माँ माने माँ, जिससे कोई बड़ी माँ होती नहीं, जगत की माँ। जो बाबा ने मुरली में बोला है कि वास्तव में जगदम्बा ये ब्रह्मा है, तो तथागत तो ब्रह्मा कुमार कुमारी होनी, यही समझ लिया कि दादा लेखराज ही ब्रह्मा है। दादा लेखराज का तो वो टाइटल है क्या, ब्रह्मा। बच्चे के रूप में उस बच्चे ने अपने माँ बाप का टाइटल धारण किया है उस कार्य को संपन्न करने के लिए, जो कार्य माँ बाप अधूरा छोड़ करके चले गए थे। तो 68 तक वो कार्य ब्रह्मा बाबा ने मृत्यु पर्यंत सच्चाई और सफाई से पूरा किया। बाप का भी पार्ट पूरा किया, माँ का भी पार्ट पूरा किया। और ओमराधे ने क्या किया, मम्मा सरस्वती ने, वो जो दूसरी माता जिसके बच्ची के बारे में जिक्र किया है, तो दूसरी बच्ची जो थी वो वास्तव में राधा बनने वाली आत्मा है, जो भविष्य आने वाले भविष्य में चंद्रवंशी राधा के रूप में डिक्लेयर होनी है। ज्ञान चंद्रमा के पालन किए हुए कुल में पालना ले रही है, तो उसका टाइटल मम्मा ओमराधे ने धारण किया। अब मम्मा ने भी शरीर छोड़ दिया और ब्रह्मा दादा लेखराज ने भी शरीर छोड़ दिया। यही दोनों आत्माएं उन दोनों आज वाले बच्चों में फिर प्रवेश करती है, बच्चियों में। तो उनमें एक बच्ची का पार्ट है जगदम्बा का और एक बच्ची का पार्ट है राधा का। नहीं समझ में आया, यज्ञ के आदि में दो माताएं थी, मुरलियों में जिक्र आया है। ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, इसका मतलब मम्मा बाबा से भी ज्यादा पावरफुल हुए। मम्मा बाबा दीदी दादियों दादाओं को डायरेक्शन देते रहे, इसका मतलब मम्मा बाबा दीदी दादियों दादाओं से पावरफुल हुए ना। और मम्मा बाबा को डायरेक्शन देने वाले वो हुए, इसका मतलब वो उनसे भी ज्यादा पावरफुल हो गए। जब यहाँ पावरफुल होने की शूटिंग कर दी तो सतयुग में भी जाकर के वो उनके माँ बाप बनेंगे कि नहीं बनेंगे। माँ बाप बच्चों से अपनी रचना से ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो इनको संगम युग में माँ बाप बनना है और उनको सतयुग में बच्चा बनना है, इनको ब्रह्मा और सरस्वती को। तो ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माएं यज्ञ के आदि में भी बच्चा और बच्ची के रूप में उन्होंने पार्ट बजाया, बच्ची के रूप में और बच्चे के रूप में जन्म लिया। और जन्म देने वाले कौन थे, हाँ यज्ञ माता और प्रजापिता, ये तो हो गए माता पिता, और कृष्ण हो गया बच्चा, और वो राधे कौन हुई, कौन सी राधे, सतयुग की राधे या संगम युग में प्रत्यक्ष होने वाली कृष्ण के साथ वाली राधा। संगम युग कृष्ण का गायन है या सतयुग कृष्ण का गायन है, कंस के साथ वाली कृष्ण का गायन है ना, सतयुग में तो कंस होगा ही नहीं, तो राधे का किसका गायन है, सतयुग वाली राधे का या संगम वाली राधे का, संगम वाली राधे का गायन हुआ ना, तो वो संगम वाली राधा वही आदि वाली राधा है जो आदि में सो अंत में प्रत्यक्ष होगी। नहीं समझ आया, जो आदि में बच्ची थी कुंवारी कन्या वही कुंवारी कन्या फिर अंत में प्रत्यक्ष होगी अपनी प्योरिटी की पावर से, विजयमाला की हेड बनकर। और रुद्रमाला की हेड कौन होगी, रुद्रमाला के मन के जो है वो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, राजाएं तो जन्म जन्मांतर इम्प्योरिटी धारण करते रहे हैं या उन्होंने पवित्रता धारण की है। भारत में क्या हुआ है हाल राजाओं का, इम्प्योरिटी धारण की, ढेर की ढेर राजाएं रखने वाले बने। तो जब इम्प्योरिटी थी, प्योरिटी नहीं थी, तो यूनिटी भी नहीं हो सकती। तो भारत के राजाओं ने आपस में लड़ झगड़ करके भारत का क्या हाल कर दिया, उसका कारण क्या हुआ, इम्प्योरिटी। तो रुद्रमाला के जो पहले दो मणके हैं सबसे ऊपर वाले, एक है प्रजापिता और दूसरी है प्रजा माता, यज्ञ के आने वाले दोनों माता पिता हो गए। तो वो यज्ञ के आने वाले जो माता पिता हैं, उनसे जन्म होता है दो बच्चों का, एक कृष्ण बच्चा, माने यज्ञ के आदि में उनका क्या नाम हुआ, ब्रह्मा। दादा लेखराज वो लाइट में आए, ये तो बाबा ने मुरली में बता दिया है कि ये बच्चियां भी जानती हैं, यानी वो दीदी दादियां जानती हैं, हमसे क्यों पूछते हैं। नहीं, आपको नहीं मालूम तो आपको बताया जा रहा है कि बाबा ने मुरली में बोला है, पहले ही बोल दिया। ये रिसर्च आपको करनी है, ये शिस्त, ये होशियारी आप में होनी चाहिए कि मीठे मीठी बातें करके उन दीदी दादियों से पूछ लीजिए, उनके फोटो ले लीजिए, उनके फोटो भी रखे हुए होंगे, उन्होंने तो देखा है ना उनको, तो फोटो भी है। अरे वो सब तो संपन्न परिवार के थे लोग हैं, है? किससे पहले लेकिन मुरलियों में तो ये वाक्य बोला हुआ है, ये तो मुरलियाँ तो आपने, आप में से किसी ने पढ़ी है ना, ऐसी कैसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, तो इससे तो साबित होता है। चलो हमें किसी ने बताया ना बताया, हमें मालूम हो या ना मालूम हो, बाबा की वाणी में जब ये बात आई हुई है, हाँ तो आप समझ लीजिए। अगर आपका ही समझने का पार्ट होता तो फिर माता पिता क्या करेंगे, तो निमित्त बने हुए। तो कहने का मतलब जो यज्ञ की आदि की माता और वो पिता, वो दोनों रुद्रमाला के मुख्य मणके हो गए, और फिर बाद में बच्चा पैदा हुआ और बच्ची पैदा हुई, तो बच्चा हुआ ब्रह्मा और बच्ची कौन हुई यज्ञ के आदि में, हैं? ओम राधे नहीं, ओम राधे के लिए तो मुरलियों में बोला हुआ है कि सरस्वती जो है बीच में आती है, बीच में ही लोप हो जाती है, वो आदि रतन नहीं है, क्या आदि रतन नहीं है, आदि में जो थी बच्ची वो कोई और बच्ची थी, दूसरी माता। तो जो दूसरी माता थी वही वास्तव में ओम राधे थी, ये तो तहसीलधारी ओम राधे हुई, माना मम्मा सरस्वती जगदम्बा उसका टाइटल पड़ा, उन माताओं का टाइटल उसने धारण किया। बाबा ने तो मुरली में कह दिया वास्तव में जगदम्बा ये ब्रह्मा है, तो यज्ञ के आदि वाली माता ही वास्तव में जगदम्बा हुई, जगत की अम्बा, जो सारे विश्व में एडम के साथ वाली ईव प्रत्यक्ष होगी, आदम के साथ वाली हवा बन करके प्रत्यक्ष होगी, हिंदी में हवा कहते हैं बहुत भयंकर को, क्या वास्तव में शंकर का स्वरूप इतना भयंकर नहीं है, लेकिन संहार कारिणी कोई शक्ति है जो सृष्टि का, सारी सृष्टि का विनाश करने के निमित्त बनती है। एटम बम विनाश नहीं करेंगे दुनिया का, वो तो सिर्फ शंकर के साथ कहा जाता है हर हर बम बम, लेकिन सारी दुनिया का विनाश करने के निमित्त बनती है प्रकृति। प्र माने प्रकट रूपेण, प्रति माने जो कार्य किया जाए, रचना रची जाए, जिसकी प्रकट रूप से रचना रची गई है परमात्मा के द्वारा, यानी परमात्मा ने जिसको रचने में अपनी एड़ी से लेकर के चोटी तक की ताकत लगाई है, वो है प्रकृति। ये प्रकृति का जब विकराल रूप धारण होगा तो सारी दुनिया विनाश हो जाएगी। कब विकराल रूप धारण करेगी, जब मनुष्य एटम बम फोड़ेंगे। ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे होगा, ब्राह्मणों की दुनिया में है ग्लानी के एटम बम, बड़े बड़े महारथी जो है, दीदी दादी दादाएं, मम्मा और बाबा, उनके बारे में जो अंदर अंदर बातें अभी चल रही हैं, वो ग्लानी उखड़ पड़ेगी, ग्लानी का विस्फोट होगा, और जो श्रद्धा बैठी हुई है बड़े बड़े संगठनों को, दीदी दादी दादाओं मम्मा बाबा के ऊपर, वो सारी श्रद्धा उखड़ पड़ेगी। तो ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश हो जाए। ये ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश शुरू कब से हुआ, 76 से। एक तरफ स्थापना, जमुना के कंठे पर दिल्ली में ब्राह्मणों की दुनिया में, और दूसरी तरफ विनार, ये हाहाकार की शूटिंग हो चुकी दिल्ली के कंठे पर, फाउंडेशन पड़ चुका। अब क्या होना है? अब संपन्न आहुति होनी है, राजधानी स्थापन होने की। रुद्रमाला के मणके भी वो इकट्ठे हो रहे हैं, नंबर वार प्रशासन साथ। तो वो यज्ञ की आदि की माता और वो यज्ञ के आदि का पिता, ये माता पिता रुद्रमाला के मुख्य मणके हो गए, और ब्रह्मा और आदि की वो दूसरी जो शक्ति थी वो ओम राधे, यानी संगम युग में राधे सो लक्ष्मी, यानी नर से नारी से लक्ष्मी बनने वाली, वो यज्ञ की आदि की दूसरी माता वो साबित हो जाती। ये दो हुई जिनका यादगार माउंट आबू में बना हुआ है। कौन सा यादगार बना हुआ है? अधर कुमारी और कन्याकुमारी। तो ये अधर कुमारी और कन्याकुमारी, कन्याकुमारी जो होगी उसमें कौन सी पावर ज्यादा होगी, और अधर कुमारी में कौन सी पावर ज्यादा होगी? कन्याकुमारी में प्योरिटी की पावर ज्यादा होगी, और अधर कुमारी में अनुभव की अथॉरिटी होगी, क्योंकि माताएं जितनी अनुभवी होती हैं उतना कोई अनुभव हाँ कुमारी में नहीं हो सकता। तो वही यज्ञ की आदि की माता फिर दोबारा आकर के यज्ञ माता के रूप में जब प्रकट होती है, तो थोड़े समय के अंदर, क्योंकि उसका तो पार्ट है जन्म जन्मांतर की जगत की माता, तो उसके अंदर वो अनुभव भरे हुए हैं, गट्स भरे हुए हैं, थोड़े समय के अंदर ही वो जगत माता बनने का टाइटल ही धारण नहीं करती है, ओरिजिनल माता विश्व की बन जाती है। माताओं का विशेष गुण क्या है? माता का विशेष गुण क्या है? सहन शक्ति। तो रुद्रमाला का मणका है, फिर माता कैसे बन जाएगी? रुद्रमाला के मणके तो सब पुरुष वृत्ति के हैं, पुरुष हैं, जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, राइट और लेफ्ट। स्त्री को वाम अंगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाम अंगी यानी बायां अंग। जो अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया है उसमें स्त्री को किस ओर दिखाया है? लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड वाम अंगी। तो वो यज्ञ के आदि वाली माता वो स्त्री का रूप हुआ। शक्ति रचने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों चाहिए, इसलिए यहाँ बोला हुआ है कि पहले पहले माता की फिर पिता की लागत होती है। बच्चों बच्चे पहले माता को पहचानते हैं फिर पिता को पहचानते हैं। यज्ञ में भी ऐसे हुआ, पहले टाइटलधारी माता को पहचाना, ब्रह्मा को, पिता गुप्त रहा। यहाँ भी ऐसे ही होता है। 76 में बाप जब प्रत्यक्ष होता है तो प्रत्यक्ष हुआ न हुआ बराबर हो जाता है, क्योंकि विदेशियों के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होता है। विदेशियों की तो भाषा भी कैसी होगी? विदेशी। तो जब भाषा ही उनकी विदेशी है तो ज्ञान की गहराई को तो उतना नहीं समझ सकते जल्दी जल्दी, इसलिए वो बाप को बुद्धि से तीखे होने के कारण प्रत्यक्ष तो करते हैं, लेकिन प्रत्यक्षता पूरी नहीं हो पाती। इसलिए विदेश में रात्रि के 12 बजे दिन की शुरुआत मानते हैं, और भारतवर्ष में, भारतवर्ष में कै बजे से मानते हैं?
6 बजे,
सुबह के 6 बजे से, जब सूर्य उदय होता है। तो माउंट आबू में यादगार है सनसेट पॉइंट की, सूर्य अस्त की यादगार है, सूर्य उदय की यादगार वहाँ नहीं है। तो जरूर माउंट आबू में सूर्य अस्त हुआ होगा। कब अस्त हुआ? ज्ञान सूर्य अस्त कब हुआ? सतयुग की शूटिंग में 69-18 जनवरी को। और फिर उदय कब हुआ? 76। लेकिन वो उदय जो हुआ है वो भी वास्तव में विदेशियों के द्वारा बाप प्रत्यक्ष हुआ। उन तथाकथित ब्राह्मणों ने समझ लिया कि वो बाहर के विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। अरे बाहर के विदेशी तो भाषा भी नहीं जानते हैं जो ज्ञान की गहराइयों को समझ सके। ये तो ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर ही बेहद की बीज उपासनाएं हैं जो दूसरे दूसरे विदेशों के बीज हैं, वो भारत के अंदर ही मौजूद है। तो वो विदेशियों के बीज बाप को पहले प्रत्यक्ष करते हैं। उनमें कोई इस्लाम धर्म का बीज है, कोई क्रिश्चियन धर्म का मुख्य बीज है, कोई बौद्ध धर्म का मुख्य बीज है। जो 76 में ये तीनों ही विदेशी बीज मिलकर के बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष प्रैक्टिकली मनाते हैं। लेकिन विदेशी होने के कारण विदेशियों में क्या विशेषता बताइए बाबा ने, है? एक तो बुद्धि के तीखे होते हैं, कोई बात की गहराई को जल्दी समझ सकते हैं, तो बाप की भी पहचान उनको जल्दी हो जाती है। और दूसरी बात, विदेशियों की दूसरी विशेषता क्या है, है? हाँ, वो कहीं स्थिर नहीं रहते, डाइवोर्स भी जल्दी दे देते हैं, फिदा भी जल्दी होते हैं, बाप के बनते भी जल्दी हैं, और फिर डाइवोर्स वो फारकती भी दे देते। तो जो प्रत्यक्षता हुई न हुई बराबर हो जाती। एडवांस पार्टी जो दिल्ली में प्रखर बनती है 76 से, वो 80 तक पहुंचते पहुंचते दिल्ली से उसका साफाया हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? जो आदि में हुआ तो अंत में ही होना। आदि में सिंध हैदराबाद में क्या हुआ? 36-37 में बड़ी तेजी से उदय हुआ, बंद आंखों के साक्षात्कार के द्वारा ये कार्य शुरू हुआ, पहचाना। और फर्ती आते आते क्या हो गया? विनाश हो गया। सिर्फ कन्याएं माता है तो श्रद्धा विश्वास वाली बची, और भाई लोग सारे टूट गए, बड़े बड़े घराने के जितने भी थे। ऐसे ही दिल्ली में हुआ एडवांस पार्टी, बड़े जोर शोर से उठी 76 से 77 में, और 80 तक जाते जाते सब भाई टूट पड़े, दो चार माताएं बची बस, क्योंकि ये बीज रूप आत्माओं का संगठन होना था। तो बीज तो थोड़ा ही होगा, बीज छोटा होता है, वृक्ष बड़ा होता है। तो 80 में वो एडवांस पार्टी बिखर गई, तथा कथित ब्राह्मणों में ये बात फैलाई दी गई कि शंकर पार्टी खलास हो गई। नाम भी उन्होंने ही रखा शंकर पार्टी, बाबा ने कोई पार्टीवादी नाम नहीं रखा। बाबा तो कहते हैं ये तीनों मेरे बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनमें पार्टीवादी का आएगी? अगर पार्टीवादी हो जाए तो विनाश हो गया, क्योंकि सेक्शन पड़ गया। बाबा तो शुरुआत से ही कहते चले आ रहे हैं, दुनिया वालों ने कहा कि ओम मंडली गई की गई यज्ञ के आदमी, और बाबा ने क्या कहा? बाबा ने अखबारों में छपाया ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, ओम मंडली दुनिया की सबसे पावरफुल मंडली है। मंडली कहा ही जाता है छोटे संगठन को, जैसे कहते हैं संगीत मंडली, तो संगति है। संगीत मंडली में कितने होते हैं? वही दो चार होते हैं, कोई तबला बजाएगा तो कोई सारंगी बजाएगा तो कोई हारमोनियम बजाएगा, उसका नाम रख देते संगीत मंडली। तो ऐसे ही यह नाम ओम मंडली। ओम मंडली में तीन अक्षर आते हैं, तीन अक्षर हैं तीन देवताओं की यादगार, ब्रह्मा का आ, विष्णु का उ और महेश का मा। ओम ओम, ये ओम के नाम से ये मंडली शुरू हुई। ये यज्ञ की वही तीन आदि वाली आत्माएं हैं, यज्ञ पिता, यज्ञ माता और हैं? और हाँ बच्ची वैष्णो देवी, ब्रह्मा वैष्णो देवी विष्णु और शंकर। ब्रह्मा विष्णु शंकर, शिव अकेला कभी नहीं आता है। बाबा कहते हैं शिव जयंती कहना रहूंगे, क्यों? शिव अकेला आता ही नहीं, शिव जब भी आएगा, जब भी प्रत्यक्ष होगा,
जब भी जन्म लेगा तो तीन मूर्तियां जरूर होंगी। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे हमेशा राइट शब्द बोलो, क्या बोलो? त्रिमूर्ति शिव जयंती। तो शिव आया तो तीन मूर्तियां जरूर होनी चाहिए। यानी सिंध हैदराबाद में साक्षात्कार हुए दादा लेखराज को, लेकिन शिव नहीं आया उस समय। वो तो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन हुआ। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होते हैं, यहाँ ज्ञान मार्ग में साक्षात्कार को कोई स्थान मुरली में बाबा ने नहीं दिया। तुम बच्चे साक्षात्कार के पीछे मत पड़ो, साक्षात्कार में माया आ जाती है, ज्ञान दीदार से दूर हो जाओ। इसमें घाटा हो सकता है, फायदा फायदा नहीं, अल्पकाल की खुशी मिल जाएगी, बाकी सदा काल की खुशी से बिछड़ जाएंगे।
हैं? आगे बढ़ते हैं, पीछे बचाते
हैं।
साक्षात्कार से
क्या?
साक्षात्कार से मालूम पड़ता है
कि हम आगे बढ़े, लेकिन कितनी देर के लिए? कितनी देर के लिए? वो दीदी दादियां यज्ञ में बैठी हुई हैं साक्षात्कार करने वाली, वो आगे बढ़ गई। अब एडवांस नॉलेज में आने के बाद आप क्या अनुभव कर रहे हैं? आगे बढ़ गई या पीछे रह गई? दीदी दादियां आगे बढ़ गई। वो साक्षात बंद आंखों का साक्षात्कार करने वाली दीदी दादियां आगे बढ़ गई या पीछे रह गई? तो पीछे रह गई। भक्त हमेशा पीछे रहेंगे। ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो यज्ञ के आदि वाली आत्माएं जिनको ज्ञान का पूरा डोज नहीं मिला इसलिए टूट पड़ी थी। यज्ञ के शुरुआत में बाबा ने पूरा शक्ति चक्र का 5-4 वर्ष का आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं दिया। तब जब ज्ञान ही नहीं मिला तो बुद्धिमानों की बुद्धि, बाप के जो बच्चे हैं बुद्धिमान बच्चे, उनको बुद्धि का भोजन ही नहीं मिला तो वो टूट पड़े। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। सुप्रीम सोल बाप जानता है कि ये मेरी ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हैं, बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र वाले बच्चे हैं, इनको तीसरा नेत्र दिया जाता है चित्रों में। तीसरा नेत्र है परमात्मा शिव की प्रवेशता की यादगार। तो जिन बच्चों में परमात्मा शिव स्वयं प्रवेश होकर के सर्विस करते हैं वो तो बाप समान बच्चे हो गए, बीज रूप आत्मा है रुद्रमाला के मणके। वो रुद्रमाला के मणके वो साक्षात्कार को विशेषता देने वाले होंगे या ज्ञान दीदार को विशेषता देने वाले होंगे? ज्ञान दीदार को विशेषता देने वाले होंगे रुद्रमाला के मणके। वो रुद्रमाला के मणके बुद्धि से जो ज्ञान पैदा होता है उस ज्ञान को महत्व देंगे, इम्पोर्टेंस देंगे, या ध्यान दीदार को इम्पोर्टेंस देंगे? ध्यान दीदार को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। तो जिन दीदी दादियों दादाओं ने यज्ञ के आदि के ध्यान दीदार वालों को इम्पोर्टेंस दिया वो पीछे रह गए, और जिन्होंने ज्ञान को इम्पोर्टेंस दिया, शुरुआत में ज्ञान था नहीं तो छोड़ के चले गए क्योंकि ज्ञान ही नहीं है, तो भक्ति मार्ग को क्या इम्पोर्टेंस है? वही आत्मा दोबारा ज्ञान में कब आती है, दोबारा यज्ञ में कब प्रवेश करती है? तब प्रवेश करती है जब 18 वर्ष की 18 अध्याय गीता 51 से लेकर के 68 तक ये पूरी हो जाती है। तो ज्ञान परिपक्व स्टेज में पहुंच गया, ज्ञान का बीज पक गया, आदि मध्य अंत का शक्ति का ज्ञान पूरा दे दिया गया, उस समय वो आत्माएं आत्माओं का आना यज्ञ में प्रवेश होता है। तो ऐसी जो आत्माएं हैं सशक्त आत्माएं, ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, ये किसने बोला? शिव ज्योति बिंदु ने बोला ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। और दिल वाले बच्चे बाप को विशेष प्रिय है ये किसने बोला? दिल होता है नीचे और दिमाग होता है, ज्ञान होता है बुद्धि तीसरा नेत्र ऊपर। हाँ, तो दिल वाले बच्चे मुझे विशेष प्रिय है ये किसने बोला? साकार बाप ने बोला, क्योंकि उसके हृदय में उसके शरीर में दिल होता है। शिव ज्योति बिंदु को शरीर ही नहीं है तो दिल भी नहीं है। जिसके पास जो चीज होती है उसको उस चीज का महत्व होता है। तो ज्ञान सूर्य शिव ज्योति बिंदु शिव है, वो मन बुद्धि रूपी आत्मा है, उसको शरीर नहीं है, दिल नहीं है, इसलिए वो ज्ञानी तू आत्मा को विशेष महत्व देने वाली आत्मा है। और प्रजापिता वाली सोल है, हाँ उसके अंदर दिल है, तो दिल वाला बाप दिल वाले बच्चों को विशेष पसंद करता है। यानि भावना वाले बच्चों को विशेष पसंद करता है। जो दिमागी बच्चे होते हैं, दिमाग दिखाने वाले, अहंकारी, क्या कहते हैं, बुद्धि का अहंकार, उन बच्चों को वो पसंद नहीं करता। तो ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, किसने कहा? शिव ज्योति बिंदु। वो शिव ज्योति बिंदु की शिव रुद्र की माला हो गई, बीज रूप आत्माओं की माला। ये दुनिया की सबसे सशक्त आत्माएं हैं। उनके माँ बाप कौन है? हैं? उन बीज रूप आत्माओं के माता पिता कौन हुए? दादा लेख रहा है कि ब्रह्मा ओम राधे नहीं, ये टीके आगे वाला वो व्यक्तित्व तो जिसके लिए आज वाणी में बोला है कि इस तरह तो को कहां से पकड़ा? पूरी बंगाल से, क्योंकि पूरी बंगाल में दादा लेखराज की दुकान थी, उसमें भागीदार को बैठाया हुआ था। वो लौकिक जीवन का भी भागीदार है तो अलौकिक जीवन का भी भागीदार है। तो वो अलौकिक और लौकिक जीवन का भागीदार, उसमें परमात्मा शिव पहले प्रवेश करते हैं। तो ये हो गए हमारे यज्ञ के माता पिता, जिस यज्ञ का नाम पड़ता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। जब रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम है, शिव ज्ञान यज्ञ नाम नहीं है, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नाम नहीं है, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ नाम नहीं है, ब्रह्मा कुमारी ज्ञान यज्ञ नाम नहीं है, सरस्वती ज्ञान यज्ञ नाम नहीं है, क्या नाम है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो उसमें रुद्रमाला के मण के निमित्त बनेंगे, मुखिया बनेंगे ज्ञान देने के लिए, या कोई दूसरा निमित्त बनेगा? कौन निमित्त बनेंगे? जो रुद्रमाला के मुख्य मण के होंगे वही निमित्त बनेंगे। उनमें से एक मुख्य मण का जो है वो रुद्र के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला, रौद्र रूप धारण करने वाला, और दूसरा रुद्राणी। तो ये जगत के माता और पिता हो गए। लेकिन माता जो है वो फाउंडेशन है, न्यू है, क्योंकि माता के द्वारा ही नई दुनिया की बिल्डिंग खड़ी होनी है। तो जैसे न्यू में पहला पत्थर डाला जाता है, तो वो पत्थर दिखाई पड़ता है या ऊपर का कंगूरा दिखाई पड़ता है दुनिया वालों को? ऊपर का कंगूरा तो सब देखेंगे, लेकिन पत्थर की इम्पोर्टेंस कौन जानता है? जो मकान का मालिक है वो ही उसकी इम्पोर्टेंस को जानता है। इसलिए जब एडवांस नॉलेज शुरू होती है तो भी अंत में, और जब रुद्र ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ आदि में 36 से, तो भी आदि में भी तो अंत में भी वो शिव बाप बनना बन करके पहले किसको फाउंडेशन बनाता है? बन्नी को फाउंडेशन, उस यज्ञ माता को फाउंडेशन बनाता है। क्योंकि मुरली में बोला हुआ जो आदि में हुआ तो अंत में प्रत्यक्ष होगा। तो ये बाबा ने बता दिया।